अगर आपको कभी मौका मिले कि आप अपनी लाइफ के किसी चैप्टर को वापस लिख सकें, जो हो चुका है उसे बदल सकें, तो क्या आप बदलने की कोशिश करेंगे? अगर हां, तो फिर किस्मत का क्या? क्या किस्मत का लिखा बदला जा सकता है? प्रारब्ध, नियति या डेस्टिनी, क्या ये पहले से ही तय किए जा चुके होते हैं? क्या किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता है? क्या इंसान चाहकर भी अपनी नियति को बदल नहीं सकता? ये सवाल काफी उलझा हुआ है। फिलहाल इस कहानी का नायक अनंत फिर से उसी मोड़ पर आ चुका है जब उसके सामने वही सब दोहराया जा रहा है जिसे रोकने के लिए समय के देवता ने उसे समय में वापस भेज दिया था। क्या अनंत इस बार सुशांत को बचा सकेगा? क्या वो सुशांत और अपनी डेस्टिनी को बदल सकेगा? अगर आप कालशंकु दूसरा अध्याय पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया यहीं रुक जाएं। कहानी के किरदारों और घटनाओं के सिक्वेंस और इंपॉर्टेंस समझने के लिए जरूरी है कि यह कहानी शुरू से सुनी जाए। धन्यवाद। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी, कालशंकु दूसरा अध्याय भाग 11। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। सुशांत ने अनंत को भभूति के पंजों से निकाल ही लिया था, लेकिन उसकी इस हरकत ने भभूति को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके फैसले को कोई बदलने की कोशिश तक करे। वो गुस्से से दहाड़ उठा।
मैंने पहले कह दी थी कि मारे फैसला के बीच में कोई को नहीं बोल सके। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी रे।
सुशांत को समझ आ गया कि उसने क्या गलती कर दी है। उसने बात को संभालने की कोशिश की। हम एक मिनट बात कर, मगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि इस बार भभूति का जवाब उसकी रिवॉल्वर से निकली गोली ने दिया था। गोली सीधे सुशांत के सीने पर लगी थी। सुशांत के लड़खड़ाकर गिरने से पहले उसके बदन में 2-3 गोलियां और धंस चुकी थी। वो उसी वक्त एक कटे पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। अनंत चिल्ला उठा। जिस अनहोनी को वो टालना चाह रहा था वो होनी में तब्दील हो चुकी थी। सुशांत दम तोड़ चुका था। अनंत भागकर सुशांत से लिपट गया। वो इस वक्त पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने से अब कुछ नहीं बदल सकता था। तभी उसे लगा कि वहां फिर से कोई हरकत हो रही है। भभूति ने फिर से अपनी बंदूक तान ली थी और इस बार उसके निशाने पर अनंत था। लेकिन भभूति के कुछ करने से पहले अनंत उस पर झपट पड़ा। भभूति ने इस वार की उम्मीद हरगिज नहीं की थी। वो संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके साथी भागकर उसके पास आने लगे, लेकिन तब तक अनंत अपना चाकू निकाल चुका था और उसने पूरी ताकत लगाकर भभूति पर वार किया। शायद कोई और होता तो इस वार को बचा नहीं पाता, लेकिन भभूति कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने इस वार को बचा लिया। तब तक भभूति के साथ ही अनंत पर काबू पा चुके थे। भभूति किसी चोट खाए शेर की तरह उठा और उसने फिर से अपनी रिवॉल्वर संभाल ली। अनंत के पास अब कोई मौका नहीं था। वो हार मान चुका था। उसने मरने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन इस वक्त भी वो गुस्से से फड़फड़ा रहा था। मौत को सामने देखकर भी वो भभूति की आंखों में आंखें डालकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। उसके ये तेवर देख एक बार भभूति भी ठिठक गया। अपने शिकार से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद उसने हरगिज नहीं की थी। उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने से पहले कुछ सेकंड का इंतजार किया। शायद ये 1-2 सेकंड का इंतजार ही था जिसने अनंत के लिए संजीवनी का काम किया। उस बूढ़े ने भभूति को आवाज दी,
भभूति।
भभूति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनंत की तरफ निशाना साधे खड़ा था। बूढ़े ने फिर से कहा,
भभूति तू इन्हें कोनी मार सके है।
लेकिन भभूति अभी भी वैसे ही खड़ा था। बूढ़े ने फिर से कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अनंत इस वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि बूढ़े की बात सुनकर भभूति के तेवर ठंडे पड़ने लगे थे। बूढ़ा बार बार भभूति को पीछे हटने के लिए कह रहा था। बीच में उसने एक बार गोपालदास नाम भी लिया और आखिर में वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भभूति बगैर कुछ कहे वहां से दूसरी तरफ चला गया। अनंत अभी भी गुस्से से उबल रहा था। सुशांत का हश्र देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहे जा रहा था। फिर बूढ़ा उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अनंत ने उसका हाथ झिड़क दिया। बूढ़े ने अपनी भाषा में कुछ कहना शुरू किया। उसके कहे में से अनंत एक शब्द भी समझ नहीं पाया और शायद वो इस वक्त कुछ समझना भी नहीं चाहता था। अपने जिस दोस्त को बचाने के लिए वो यहां तक आया था, वो दोस्त उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा था। अब उसके लिए क्या समझना बाकी रह गया था? लेकिन बूढ़ा उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में बूढ़े ने कुछ ऐसा कहा जिसने अनंत को हिलाकर रख दिया।
तने भी पतो है कि उनको मरनो तो निश्चित थो।
अनंत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा लेकिन बूढ़े के चेहरे पर शांति थी, ऐसी शांति जिसे देखकर अनंत ठंडा पड़ गया। उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? बूढ़े ने कहा,
तू जाने है काल शंकु कोई न माफ ना करे है। काल शंकु थारी किस्मत से बंधे है, थारे साथी ने तो मरनो ही थो।
बूढ़े की बात अनंत के ऊपर से जा रही थी लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बूढ़े ने आगे कहा,
जब मैं तने देखियो मैं समझ गयो कि काल शंकु ने पहुंचाबा को जिम्मो थारे पास ही है।
ये कहते हुए बूढ़े ने अनंत के कंधे पर हाथ रख दिया। अनंत अभी भी कुछ समझ नहीं पाया था मगर उसे लग गया कि इस बूढ़े की कही बात एकदम सही है। उस बूढ़े ने फिर से कुछ कहा। उसे देखा कि बूढ़ा उससे शंकु मांग रहा था। अनंत बेसुधी की हालत से संभला और उसने चुपचाप बैग में से शंकु निकालकर बूढ़े को थमा दिया। बूढ़ा शंकु लेकर वहां से चला गया। अनंत वहीं सुशांत की लाश के पास बैठकर सुबकने लगा। उस बूढ़े की कही बातों ने एक बार की उसे शांत जरूर किया था लेकिन अभी भी वो गुस्से से सुलग रहा था। उसे इस बात का रह रहकर अफसोस हो रहा था कि उसे बचाने के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान गंवा दी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ ही देर में वातावरण में मंत्रोच्चार की आवाज गूंजने लगी। शंकु को अनुष्ठान वाली जगह रख दिया गया। बूढ़ा मंत्रों का जाप कर रहा था जबकि भभूति हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा था। भभूति को देखकर अनंत का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर भभूति को मार डाले लेकिन भभूति के आदमी पूरी तरह से सतर्क थे। उनके बीच अनंत की किसी भी हरकत का मतलब उसके लिए मौत ही था। इसलिए अनंत के पास चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देखने के सिवा कोई चारा नहीं था। अनंत दुख के महासागर में डूबने लगा। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसे लगा कि जो वो महसूस कर रहा है वो उसके साथ पहले भी घट चुका है और इसी के साथ उसके दिमाग में कुछ नए विचार जन्म लेने लगे। वो सोच रहा था,
क्या वाकई में भभूति इस शंकु का सही हकदार है? कहीं यह हत्यारा इस शंकु से कोई गलत फायदा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं इसे हरगिज ऐसा नहीं करने दे सकता हूं। इस शंकु की वजह से सुशांत की जान चली गई है, मैं इसे उस भभूति के पास हरगिज नहीं जाने दूंगा।
अनंत ने भभूति पर हमला करने की तैयारी कर ली मगर उससे पहले ही बूढ़े के मंत्रोच्चारण के साथ शंकु में कंपन शुरू हो गए। अनंत ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। अभी 1:30 बजने में करीब 20 मिनट थे। आसमान में उन ग्रहों की रोशनी में शंकु चमकने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से किसी तरह की रोशनी निकल रही है। सभी की तरह अनंत की निगाहें भी शंकु पर टिकी थी। अनंत को लगा यही सही समय है। वो निहत्था ही दुस्साहस के लिए तैयार हो गया लेकिन उससे पहले ही गोलियों की आवाज सुनाई दी। अनंत ने खून से लहूलुहान भभूति को जमीन पर गिरते देखा। किसी के संभलने से पहले ही AK-47 जैसे हथियारों से लैस कुछ हथियारबंद लोगों ने भभूति के गिरोह के सदस्यों को मार गिराना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर अनंत वहीं एक कोने में हो गया। थोड़ी देर की फायरिंग में भभूति के सारे साथी मारे जा चुके थे। जो जिंदा बच गए उन्हें हथियार डालने के बाद भी गोलियों से भून दिया गया। अब उन लोगों ने उस जगह की तलाशी लेनी शुरू की। जल्द ही अनंत को भी ढूंढ लिया गया। एक हथियारबंद शख्स ने किसी को आवाज दी। एक इधर छिपा हुआ है, इसका क्या करना है? जवाब में एक आदमी उस तरफ चलकर आ रहा था। उसे देखकर अनंत को झटका लगा। अनंत के होंठ बुदबुदा उठे। ये तो वही पुलिस ऑफिसर है। उस ऑफिसर ने अनंत को देखा और किसी को जोर से आवाज दी, कुंवर साहब, इनका क्या करना है?
कुंवर साहब?
यह नाम सुनते ही अनंत चौंक उठा। अनंत का सोचना सही ही था, वो कुंवर अनूप सिंह ही था। अनूप सिंह ने आते ही कहा,
आप तो अनंत हैं, सुशांत जी के दोस्त। सुशांत जी कहां हैं?
यह सुनते ही अनंत रो पड़ा। अनूप सिंह का ध्यान सुशांत की लाश पर गया। उसने सहानुभूति जाहिर करते हुए कहा,
सो सॉरी, अगर सुशांत जी ने मुझे पहले बता दिया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने बल्लियों पर भरोसा किया। ये बल्ली किसी के सगे नहीं होते। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन जिसे जाना था वो जा चुका है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन।
तभी पुलिस ऑफिसर ने अनूप सिंह से पूछा, कुंवर साहब, इनके साथ क्या करना है? जवाब में अनूप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा,
अभी इनसे हमें कोई खतरा नहीं है।
ऑफिसर ने पूछा, लेकिन अगर बाद में खतरा महसूस हो तो? अनूप सिंह ने मुस्कुराते हुए आराम से कहा,
तो आपको पता है कि खतरे से कैसे निपटते हैं।
जवाब देकर अनूप सिंह वहां से अनुष्ठान वाली जगह की तरफ चला गया। तभी अनंत को फिर से ऐसा लगा कि यह सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। उसके दिमाग में फिर से पुरानी टाइमलाइन की घटनाएं कौंधने लगी। ऐसे हालात में अनंत के लिए यह सब सहन कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो इस वक्त एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में उलझ चुका था। दोनों टाइमलाइंस की घटनाएं उसके दिमाग में आपस में ओवरलैप हो रही थीं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो गया था। एक पल उसे लग रहा था कि इस जगह इस वक्त उसने अनूप सिंह से काफी बात की थी, लेकिन दूसरे ही पल उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अनूप सिंह उससे दूर अकेला उस शंकु के पास खड़ा है। अनंत यकीन और ना यकीनी की दीवार पर खड़ा था। कुछ भी समझने से काफी दूर भ्रम के महाजाल में उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी तेज कंपनों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। घड़ी में ठीक 1:30 बज चुके थे। शंकु में बड़ी जोर से कंपन होने लगे और शंकु से रोशनी का एक पुंज लाइट बीम निकलकर आसमान में ऊपर जाने लगा। अगले ही पल सारा आसमान तेज रोशनी से जगमगा उठा। कई रंगों की रोशनी आसमान में बिखर रही थी। तेज चमक के चलते किसी के लिए भी आंखें खुली रख पाना आसान नहीं था। अनंत ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। तेज रोशनी के बीच शंकु के पास एक इंसानी आकृति उतरती दिखाई दी। थोड़ी देर में जब रोशनी कम हुई तो चारों तरफ का नजारा दिखाई देने लगा। अनंत ने देखा कि वहां आम लोगों के कद से ज्यादा कद का एक मानव आ चुका था और अनूप सिंह उसके कदमों में झुका हुआ था। अनंत के होंठ बुदबुदा उठे।
दिव्य पुरुष।
उस दिव्य पुरुष ने आते ही कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। उसकी भाषा ठीक वैसी ही थी जैसी कबीले वाला बूढ़ा बोला करता था। संस्कृत जैसी कोई भाषा, लेकिन संस्कृत नहीं। मंत्र के बाद वो दिव्य पुरुष चुप हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से वही मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। अनंत ने अंदाजा लगाया कि ये कोई सवाल है जिसका जवाब इस वक्त अनूप सिंह को देना है, लेकिन अनूप सिंह यह भाषा समझ नहीं पा रहा, और जो ये भाषा समझता था वो मर चुका है। अनूप सिंह को भी समझ आ गया था कि उसने कहां गलती कर दी है, इसलिए वो भी परेशान हो उठा था। दिव्य पुरुष ने तीसरी बार अपना मंत्र या कहीं प्रश्न दोहराया, लेकिन अभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अनूप सिंह के चेहरे पर दहशत महसूस की जा सकती थी, और वो दहशत लाजमी भी थी, क्योंकि दिव्य पुरुष को गुस्सा आ चुका था। उसने अपने हाथ में पकड़ी धातु की छड़ से अनूप सिंह की तरफ इशारा किया और कुछ कहा। उस छड़ से तेज बिजली की एक लहर निकली और उसने अनूप सिंह को जलाकर रख दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का समय तक नहीं मिला। वो दिव्य पुरुष गुस्से से चारों तरफ देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर फिर से कुछ कहा, लेकिन उस पहाड़ पर मौजूद लोगों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। जवाब ना मिलने पर उसने अपनी छड़ पास में खड़े दो हथियारबंद लोगों की तरफ घुमा दी। अचानक उनमें से एक आदमी ने अपने हथियार फेंक दिए और घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लिया। उसे देखकर उसके साथ वाले आदमी ने भी ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद वहां मौजूद बाकी लोग भी इसी तरह करने लगे। लेकिन वो दिव्य पुरुष, वो तो कुछ और ही चाहता था। इस बार वो जोर से गरजा और उसकी छड़ से निकलने वाली बिजली ने उन दोनों को भून कर रख दिया। ये देखकर बाकी लोगों में भगदड़ मच गई और वो भागने लगे। तभी पुलिस ऑफिसर जोर से चिल्लाया, गोली चलाओ इस पर, और उसने उस पर बंदूक की गोली दाग दी। बंदूक की गोली उसे लगी या नहीं, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इस हरकत ने उस दिव्य पुरुष के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसने पलक झपकते ही पुलिस ऑफिसर उसके बाकी साथियों को जलाकर रख दिया। कुछ लोग जो नीचे जाने वाले रास्ते की तरफ पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उनके पास एक जोर का धमाका हुआ और वो जलकर राख हो गए। अब वहां अनंत अकेला ही बच गया था। पिछले आधे घंटे में वहां जो कुछ घटा, इसके बाद अनंत कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। यहां तक कि अनंत ने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। अभी तक उस दिव्य पुरुष ने अनंत की तरफ नहीं देखा था। अब वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर में ही आसमान में कुछ रोशनियां मंडराने लगी। उसने अपनी भाषा में कुछ कहा, जिसके बाद वो रोशनियां ऊपर जाकर गायब हो गई। अनंत एकटक इस नजारे को देख रहा था कि तभी उस दिव्य पुरुष की निगाह अनंत पर गई। वो चलकर उसके पास आने लगा। अनंत दम साधे इंतजार कर रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दिव्य पुरुष ने अपनी भाषा में कुछ कहा, लेकिन अनंत उसका एक शब्द भी नहीं समझ पाया। उसने फिर से कुछ कहा, लेकिन अनंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर अनंत चक्कर में पड़ गया। वो इस हंसी का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि उस दिव्य पुरुष ने फिर से कुछ कहना शुरू कर दिया। तभी अनंत को लगा कि उसकी बातें उसे समझ में आ रही हैं। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अरे, ये तो हिंदी में बात कर रहा है। अनंत सही था, क्योंकि दिव्य पुरुष उससे उसी की भाषा में पूछ रहा था, बोलो अब क्या चाहते हो। अनंत समझ नहीं पाया कि सवाल का क्या जवाब दे। वो बुद्ध की तरह खड़ा रहा। दिव्य पुरुष ने फिर से पूछा, धन, विजय, सफलता, क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन अनंत अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिव्य पुरुष ने यह बात समझ ली और मुस्कुराकर कहा, तुम यहां पहली बार नहीं आ रहे हो, यह सब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। अनंत उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, आप क्या कह रहे हैं। दिव्य पुरुष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने अपनी छड़ अनंत की तरफ घुमा दी। एक सेकंड के लिए अनंत सहम गया, लेकिन फिर उसे खतरा महसूस नहीं हुआ। उस छड़ से निकली ऊर्जा की एक किरण अनंत के माथे से आकर छुई और अनंत को लगा जैसे वो रोशनी के समंदर में डूब गया है। उस रोशनी के समंदर में उसे काफी सारे चित्र, काफी सारे दृश्य दिखाई दिए। काफी सारी आवाजों का कोलाहल उसे अपने कानों में सुनाई दिया, और जब वो कोलाहल शांत हुआ, रोशनी का समंदर गायब हुआ, अनंत को सारी घटनाएं याद आ चुकी थी कि किस तरह पिछली बार उसने राज के साथ काल चंकू का रहस्य सुलझाने की कोशिश शुरू की थी, किस तरह सुशांत ने दम तोड़ा था और किस तरह इस दिव्य पुरुष ने उससे कुछ मांगने को कहा था। लेकिन अनंत ने धन, विजय, सफलता की जगह अपने दोस्त सुशांत को चुना था। काफी मना करने के बाद भी अनंत अपने दोस्त सुशांत को जिंदा करने पर अड़ा रहा था, जिसकी वजह से दिव्य पुरुष ने उसे काल में पीछे भेज दिया था। अनंत को सब कुछ याद आ गया था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोल उठा, मुझे सब याद आ गया। दिव्य पुरुष, या कहें समय का देवता, जोर से हंस उठा, तुमने प्रारब्ध को बदलने की कोशिश की, लेकिन तुम सफल नहीं हो सके। जो होना है वो होकर रहता है, तुम उसे टाल नहीं सकते हो। अब अनंत के पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो लाशों के ढेर के बीच में पड़ी सुशांत की लाश को देख रहा था। वो बुदबुदाया, मेरे पास मौका था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। उस मानव ने फिर से कहा, तो अब बताओ क्या चाहते हो तुम, धन, विजय, सफलता, तुम्हें ये सब मिल सकते हैं। तुम्हें इतनी शक्ति मिल सकती है कि तुम राजाओं की तरह राज कर सकते हो, बोलो, क्या चाहते हो? अनंत ने धीमी आवाज में कहा,
मुझे मेरा दोस्त सुशांत चाहिए।
देवता गरज उठा, कौन सा दोस्त चाहिए तुम्हें? वो दोस्त जो कालचंक को मिलते ही बदल गया? वो दोस्त जिसने पैसों के लिए बुरे आदमियों से सौदा कर लिया? वो दोस्त जिसने तुम्हें दोस्त मानना छोड़ दिया? अब भी तुम्हें उसकी असलियत पता नहीं लगी? अनंत ने धीमी आवाज में ही कहा,
मुझे शुरू से उसकी असलियत पता थी कि वो मेरा दोस्त है, और मरते वक्त तक वो मेरा दोस्त रहा। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी।
देवता हंस पड़ा, मनुष्य जाति की अपनी दिक्कतें हैं, उनकी भावनाएं उन्हें बांध देती हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा दोस्त आज यहां खड़ा होता और उससे मैं धन, विजय, सफलता मांगने को कहता, तो वो बदले में तुम्हें मांगता?
अनंत ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि जब मैं मरने वाला था उस वक्त मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो मेरा दोस्त सुशांत मुझे वापस दे दीजिए।
देवता गुस्सा हो उठा, तुम कितने मूर्ख हो जो पूरी दुनिया के साम्राज्य को छोड़कर एक तुच्छ इंसान को मांग रहे हो। अनंत ने दृढ़ता से कहा,
मुझे सुशांत ही चाहिए।
देवता चुप हो गया, फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तुम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, तुम्हें एक मौका मिला था मगर तुम कुछ नहीं बदल सके।
अनंत ने कहा, मैंने गलतियां की, अगर मुझसे वो गलतियां नहीं होती तो मैं उसे बचा सकता था।
देवता हंसने लगा, फिर उसने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हो।
मैं,
अनंत कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले उस देवता ने कुछ कहते हुए छड़ से शंकु की तरफ इशारा किया, जिसके बाद शंकु में कंपन शुरू हो गए। शंकु से एक जोर के धमाके के साथ रोशनी की एक तेज लहर निकली जिसने अनंत को दूर उछाल दिया। अनंत को सब कुछ मिटता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। अनंत अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में ही उसकी आंखें बंद हो गई। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 11, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।